श्रीरामचंद्रय विश्वसर्ग विसर्गादिवक्षण दक्षित श्रीकृष्णाक्षं परं धाम विगद्धाम नमामि तत् नारायणं नमस्कृत्यो नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरो साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः खण्डमण्डलाकारम् व्याप्तम् येन चराचरम् तत्पदम् दर्शितम् येन दशमम् श्रीराम जय राम जय जय
श्रीराम जय
भगवान शंकर आपका हमारा भला कर। देवर्षि नारद काशी से विदा लेकर के भोलेनाथ से ब्रह्मलोक पहुंचे। पिता के श्री चरणों में प्रणाम। नारद के पिता ब्रह्मा जी नारद की गोद से प्रकट हुए थे, अंगूठे से दक्ष प्रजापति प्रकट हुए थे, करों से क्रतु प्रकट हुए थे। ऐसा कहा गया कि पहले मानसिक सृष्टि होती, प्राकृत वैकृत उभयात्मक तीन प्रकार की सृष्टियां मानसिक होती हैं और छह प्रकार की प्राकृत होती हैं। इस तरह नौ या दस प्रकार की सृष्टि संसार में चल रही है। प्रणाम किया और कहा, पिताजी भगवान राम कृष्ण और विष्णु के बारे तो मुझे बहुत कुछ जानकारी है, लेकिन भगवान शंकर के बारे विशेष जानकारी नहीं है और भगवान नारायण का आदेश हुआ है कि पिता से जाकर शिव चरित्र सुनो। पहले मैं आया हूं, मैं जानना चाहता हूं शिव तत्व क्या है, कैसा है और कैसे ये काशी कैसे बनती है, कैलाश कैसे बना है, किन किन रूपों में उनका श्रवण होता है। बहुत सारे प्रश्न किए। ब्रह्मदेव ने कहा, देवर्षि सौभाग्य है कि तुम्हारी वृत्ति भगवान शंकर से जुड़ गई। अनेक जन्म के पुण्यों के बाद भगवान शंकर में वृत्ति जुड़ती है। भगवान शंकर की आराधना अंतिम आराधना, ये मुक्ति के दाता हैं, ये संसार के बंधनों से छुड़ा देने वाले हैं, ये सृष्टि कभी भगवान शंकर से प्रकट होती है, कभी विष्णु से होती है, कभी राम से होती है, बदलती रहती है। भगवान शंकर से किस प्रकार सृष्टि होती है ये सुनो। शिव तत्व जो है वो अनंत ऊर्जा, विराट चेतना का ही नाम शिव है। अच्छा, समझ में आ रहा है? चेतन से जड़ पैदा होती, नास्तिक कहते हैं जड़ से चेतन पैदा होता, गोबर में छाछ डाल दो तो बिच्छू पैदा हो जाते। नास्तिकों का कहना इसी तरह दो अमीबा मिलते हैं तो जीव पैदा हो जाते। लेकिन आस्तिकों का सिद्धांत यह है कि नहीं, जड़ से चेतन नहीं है, चेतन से जड़ है। प्रत्यक्ष उदाहरण है, बाल जड़ है, नाखून जो बढ़ के आगे आ जाते हैं भी जड़ है। जब तक चेतन है इसके अंदर ये बढ़ते हैं, डेड बॉडी के बाल नहीं बढ़ते, नाखून नहीं बढ़ते। अगर जड़ से ही माना जाए तो जब चेतन निकल गया तब भी बाल बढ़ना चाहिए कि नहीं? हाँ, नाखून बढ़ना चाहिए, शरीर भी बढ़े। चेतन से जड़ की उत्पत्ति होती है, जड़ से चेतन की नहीं। संसार के ब्रह्मांड के करोड़ों ब्रह्मांड के मूल में चेतन तत्व है, चेतन से ही जड़ की उत्पत्ति होती रहती है और वो मूल में ज्योति है, केवल ज्योति। घनीभूत ज्योति ही शिवपद वाच्य है। वैष्णव उन्हीं को नारायण महानारायण कह के स्मरण करते हैं, भिन्न भिन्न देवताओं के उपासक भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। निराकार से साकार कैसे बनता है? उदाहरण, जब अंडा पैदा होता है ना, उसी समय उसको अगर तोड़ो तो केवल पानी पानी होगा उसको। समझ में आ रहा है? नहीं, अंडा मुर्गी से पैदा हुआ उसी समय तोड़ो क्या होगा? निराकार है ना, उस पानी के अंदर ही आंख बनती है, चोंच बनती है, कान बनते हैं, पैर बनते हैं, पंख बनते हैं। निराकार से साकार बना कि नहीं? समझ में आ गया? जैसे मुर्गी के अंडे हैं, निराकार पानी तो निराकार है ना भाई, उसी में फिर धीरे धीरे मनुष्य अंदर भी जीवाणु जो आते हैं पहले निराकार होते हैं, फिर वो अणु का रूप लेते हैं, फिर माता के गर्भ में जाकर एक एक अंग का निर्माण होता है। तो पहले साकार नहीं है, पहले निराकार है और निराकार से ही साकार, और जो साकार होता है वो एक दिन मिट जाता है। जिसका कोई आकार ही नहीं उसे कोई मिट ही नहीं सकता। आपकी आत्मा निराकार है, परमात्मा भी मूल में निराकार ही है, वो प्रकृति के संयोग से साकार बन जाता है। योग माया समावृता मूढ़ो एवं ना भी जानाति लोको मामज मव्ययम्। मैं योग में दूसरा प्रत्यक्ष उदाहरण यह है कि टीवी में जो चित्र बनते हैं क्या वो लाइट से ही बनते हैं, और लाइट निराकार, लाइट जो है वो उसमें जो चित्र बने वो साकार। इसी तरह से निराकार ब्रह्म से साकार जगत का निर्माण होता है। भोलेनाथ भगवान शिव के मन के अंदर संकल्प उठा कि सृष्टि बनानी है, चलानी है, उससे सदाशिव साकार बन के प्रकट हो जाते। निराकार शिव से सदाशिव साकार बन के प्रकट है। कैसे हो गए, उदाहरण आपको दे दिया कि मूल में निराकार है और वही बाद में साकार बनता है। दोनों में अंतर कुछ नहीं है, लेकिन जो निराकार तत्व है, आपकी आत्मा अगर साकार हो तो यम के दूत पकड़ लेंगे आप। और जब तक आप अपने को साकार मानते रहोगे तब तक यम दूत आपको पकड़ते रहेंगे। शरीर को अपना स्वरूप माना ना आपने, साकार मान लिया कि नहीं? भाई हवा तो निराकार है और ट्यूब साकार है। जब ट्यूब के अंदर हवा भर गई तो ट्यूब जहां जाएगा हवा को जाना पड़ेगा नहीं? हवा निराकार है, ट्यूब साकार है, भर गई। इसी तरह मन बुद्धि देह इंद्रिय मन और बुद्धि, नहीं समझ में आया, ये साकार प्रकृति से बनते हैं और आत्मा निराकार ज्योति से बनती है। अज्ञान के कारण निराकार ज्योति जीवात्मा ने साकार देह इंद्रिय मन को अपना स्वरूप मान लिया। जैसे हवा ट्यूब में भर गई, इसी तरह चेतन को आपने जड़ के साथ मिला के एक मान लिया। यह आपकी जो मान्यता है यही आपके जन्म और मृत्यु का कारण है। यदि आप अपने निराकार रूप में स्थित हो जाएं, तो फिर यम के रूप पकड़ ही नहीं सकती आपको ना। नहीं समझ में आ रही बात, निराकार पकड़ में कहां आता? जैसे आग है, लोहा डाला गया आग में, अब लोहा अगर गोल है तो आग भी गोल हो जाती है, लोहा लंबा है तो आग में उस लोहा लाल होकर निकलेगा ना। तो जैसा लोहा होगा अग्नि की वैसे ही आग करती, फिर उस लाल लोहे को जहां ले जाओ आग भी साथ जाएगी कि नहीं जाएगी? हाँ? समझ में आ रहा है? लकड़ी में आग जली, अब लकड़ी को आप जहां ले जाओगे उस आग को जाना पड़ेगा ना, और लकड़ी से संबंध विच्छेद हुआ और साकार आग निराकार में मिलके ही हुई। समझ में आता है, देर से आता है, तो समझने की कोशिश करनी चाहिए। जो परम शिव तत्व है वो करोड़ों ब्रह्मांडों में समाया हुआ है, वो सच्चित और आनंद है। सत्यम शिवाम
अंदरम,
हाँ, यहाँ सच्चिदानंद कहा, वहां सत्यम शिवम
सुंदरम,
सुंदरम पर्यायवाची जैसे शब्द। तो वो जो सत्यम शिवम सुंदरम निराकार से साकार बंध, इसीलिए कल आपने सुना कि जो पिंडी है, शिवलिंग है, वो निराकार है, क्योंकि उसमें कोई अंग नहीं बने हुए ना, इसलिए वो निराकार का प्रतीक है और वो सर्वोपरि पार्श्व है। उसकी आराधना से शीघ्र लाभ होता है लोगों को। तो भगवान निराकार शिव करोड़ों ब्रह्मांड में ज्योति रूप में समाये, उनसे सगुण साकार सदाशिव प्रकट होते हैं। उन्होंने अपने अंदर से ही भगवती परांबा शक्ति को प्रकट किया हुआ है। उन्होंने ही अपने रहने के लिए संकल्प मात्र से काशी का निर्माण किया हुआ है। काशी में रह करके दोनों ने विचार किया कि संसार का संचालन करने के लिए और देवताओं का निर्माण कर दिया जाए, हम और आप यही काशी में रहेंगे और मुक्ति का प्याऊ लगा देंगे, लंगर लगाएंगे, संसार के प्रपंच में हम नहीं फंसेंगे, संसारियों का दुख सहन नहीं होगा हमको, क्योंकि कर्पूर गौरव करुणा इतनी ज्यादा है कि फिर वो दूसरे का दुख सहन नहीं कर पाए। इसलिए अपन एक बाउंड्री बना ली पंचकोशिक, इसके अंदर ही रहना है, और जो दीन दुखी यहाँ आते जाए उनको सीधे ऊपर भेजते जाना है। बोले शंकर भगवान की जय। समझे क्या नहीं राम? शिव पुराण श्रावण का महीना सुन रहे, बड़े भाग्यशाली हो, ये हमारे पराशर जी हैं, टिकट रिजर्व थी कैंसिल करा था, शिव पुराण सुनने बैठे, काफी दिनों से आए हुए हैं, लगन होनी चाहिए ना भाई यार। नीलकंठ जी के बहू बेटे आए थे, पोती भी आई, उनको विदा कर दिया, स्वयं पति पत्नी यहीं बैठे हुए हैं। नहीं समझ में आया? सुरेश जी के भी शायद पोती पोता आया था, गए गए, कहते एक महीना यही रहना। तीर्थ दम सुशीता उपस्पर्शंती, दो तीर्थ हैं समय तुम्हारे सामने, एक गंगा और दूसरे कथा। क्या समझा? कथा भी गंगा जली है, और गंगा जल तो जले है। तीर्थ द्वयम, दो तीर्थ हैं, आप दो तीर्थों के बीच में बैठे हुए हो। ये काशी जा रहे थे, ट्रेनिंग कैंसिल हो गए, बोले अब कथा सुनेंगे बैठे। दो तीर्थों में इस समय गोता लग रहा है तुम्हारे, भाग्यशाली हो, पावन गंगा की गोद में बैठकर भोलेनाथ का चरित्र श्रवण कर रहे हो। गंगा के किनारे बैठना, नहाना, जल पीना, गंगा मैया या तो विष्णु बना देंगी या शंकर बना देंगी। एक रहीम मुसलमान थे, पर वो सनातन से प्रभावित थे, वो गंगा मैया से प्रार्थना करते हैं, मां मैं तुम्हारा जल पीऊं या तुम्हारे में स्नान करूं, तो तुम दो में से एक मुझे बना दोगी, या तो विष्णु बनाओगी या। तो देखो भावना है, मुसलमान रहीम कवि हुए हैं ना, वो कहते हैं मां मुझे विष्णु नहीं बनाना। क्यों? विष्णु बनने से क्यों डर रहे हो? मैं विष्णु बनूंगा मां तो तुम मेरे चरणों में रहोगी ना, विष्णु के चरणों से गंगा निकली है, तो मैं आपको अपने चरणों में रखू? नहीं नहीं, मैं विष्णु नहीं बनू। फिर क्या बनना? बोले शंकर बना देना। क्यों? शंकर के सिर पर आप रहोगी, मेरे सिर पर होगी, मैं सदा आपको प्रणाम करता।
हरे हरे हरे।
क्या हमने बताया ना कि ऋषिकेश में एक साप्ताहिक शिविर लगा हुआ था, बहुत लोग एकत्र हुए, एक व्यक्ति आए थे, समाचार मिला कि पुत्र की मृत्यु हो गई। लोगों ने कहा जाओ 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 पुत्र, तुम्हारे पुत्र समाप्त। तो कहते हैं जब समाप्त ही हो गया तो जाके क्या करूंगा, हाँ बीमार होता भी होता तो भाई जाओ इलाज करो, व्यवस्था बनो। अब जब समाप्त हो ही चुका है तो मैं अपनी साधना क्यों छोड़ो? फोन कर दिया कि संस्कार करा दो, मैं तो समाप्ति के बाद ही आऊंगा, पहले नहीं आऊंगा। जब लगन लग जाती है ना तब ऐसा होता। क्या समझ रहे हैं? और वो लगन किसी किसी को ऐसी लगती है, और लगन लग गई वाह फिर तो सीधे जाओगे, कोई रोक नहीं सकेगा। तो भगवान शंकर ने काशी का निर्माण किया, अभिमुक्त क्षेत्र कहलाता है, भगवान शंकर वहां से अलग नहीं होते। त्रिशूल पर काशी को रखते हैं, और जब प्रलय का समय आता है तो त्रिशूल से उठा के फिर अपनी ज्योति मिले। शिवलोक और वैकुंठ ये दो प्रलय में भी नष्ट नहीं हुआ करते, शिवलोक और काशी जो है प्रलय में भी नष्ट नहीं होती। काशी का नाम आनंद वन है, एक तो वृंदावन है और दूसरे आनंद वन। काशी का एक नाम
आनंद वन,
आनंद वन इसका मतलब कि आनंद बन जाओ, आओ और आनंद बन के जाओ यहां।
जय जय जय।
काशी नाम इसलिए पड़ा कि पापों का आकर्षण खींचते हैं, वो खत्म कर देते। वाराणसी नाम इसलिए पड़ा कि वरुणा और असी दो नदियों के बीच में काशी बसी है, इसलिए नाम पड़ा वाराणसी पड़ जाता है। अंबा पार्वती ने कहा भोलेनाथ सिर सृष्टि पालन संहार इनका काम दूसरे के ऊपर छोड़, दाएं बाएं भुजा से ब्रह्मा और विष्णु को प्रकट किया है। पार्वती अंबा से भी महासरस्वती और लक्ष्मी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा से कहा कि तुम्हें सृष्टि करनी, संसार बढ़ाना। भगवान विष्णु से कहा तुम्हें पालन करना। ये ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है तो जैसे मुर्गी का अंडा, वो भी अंडा कहलाता है ना, और ये भी अंड कहलाता है। छोटा अंडा है वो और ये
बड़ा अंडा है,
उसी आकृति, उसी आकृति में होता है। और जैसे इसमें पहले जल ही होता है बाद में आकृति बनती है, इसी तरह ये ब्रह्मांड में पहले केवल जल ही जल होता है, भगवान विष्णु उसमें शयन करते हैं, वहीं उनका नाम नारायण पड़ा हुआ है। और जब उठ के देखा उन्होंने काशी का निर्माण सौंदर्य तो से हिलाया, क्या सुंदर काशी है, क्या सुंदर बनाया भोलेनाथ, आपने कितनी सुंदर काशी बनाई। से हिलाया कुंडल, कान हिले तो कान का एक जो कुंडल था वो
गिर गया।
गिर गया कहाँ? गिरा काशी में गिरा। जहां वो कुंडल गिरा उसका नाम मणिकर्णिका पड़ गया। नास्ति मणिकर्णिका समम तीर्थम, मणिकर्णिका जैसा कोई तीर्थ नहीं और काशीपुरी जैसा कोई स्थान नहीं, तीर्थ नहीं दुनिया के। शिव का आश्रय, आप काशी नहीं जा सकते, नहीं रह सकते, अगर शिव पुराण भी आप श्रद्धा से सुन लें तो आप काशी में ही बच गए समझ लो, और अंत में भोले बाबा तुम्हारा उद्धार करते।
हरे हरे
महादेव।
भगवान नारायण को लक्ष्मी दी है और ब्रह्मा को सरस्वती भगवान शंकर ने दी है, शिव पुराण के आधार। और देखो सभी पुराणों के लेखक एक ही व्यक्ति हैं, वेद व्यास। ऐसा भी नहीं कि भाई इसके लेखक अलग है, उन्होंने अपने देवता की प्रशंसा कर दी, उनके अलग है, उन्होंने अपने देवता की प्रशंसा कर दी। ना ना, लेखक सबके एक ही हैं, ये मजे की बात है। इसलिए पक्षपात नहीं, जो बात सही है वही व्यास जी के द्वारा। अच्छा, लेखक है भगवान गणपति, गणपति जी लेखक हैं, व्यास जी बोलते जाते हैं वो लिखते चले जाते। गणेश तो भगवान है और व्यास आज भी हैं, व्यास जी तो अभी जीवित हैं, ये पुराणों के लेखक, महाभारत के लेखक व्यास, ये बोलते जाते हैं और वो
लिखते जाते हैं,
लिखते चले जाते। व्यास जी को लिखना कम आता तो गणपति ने कलम उठा।
स्पीड अच्छी है।
यहां पर एक शर्त रखी गई है, गणेश ने कहा मेरी कलम रुकना नहीं चाहिए। समझ में आया? तो व्यास जी ने भी एक प्रतिज्ञा की, अर्थ सोच करके ही आपको लिखना चाहिए। जब देखते हैं कि जल्दी जल्दी लिख रहे हैं और आगे भी श्लोक बना नहीं, तो ऐसा कूट श्लोक बोल देते थे जिसका शब्दार्थ कुछ और भावार्थ कुछ और। तो गणेश जी सोचने लगते थे, तब तक व्यास जी आगे तैयार है, आगे लिखा देते। महाभारत के 1,00,000 श्लोकों में अष्टौ श्लोक सहस्राणि, अष्टौ श्लोक शतानि का प्रतिज्ञा है। 1,00,000 श्लोकों के बीच में 8,800 श्लोक ऐसे हैं जिसका अर्थ या तो मैं जानता हूं या सुखदेव जानते हैं, बाकी कोई जानते हैं कि नहीं जानते, भगवान जाने, गणेश भगवान जानते हैं। अच्छा समझ में आया, दो विष्णु और ब्रह्मा, सरस्वती और लक्ष्मी। अब भगवान भूत वामन विश्वनाथ ने कहा तीसरा स्वरूप मेरा मेरे हृदय से प्रकट होकर ब्रह्मा के अंदर निवास करके ब्रह्मा से प्रकट हो जाएगा, उसका नाम होगा रुद्र और उनका निवास होगा कैलाश, और वो मेरे ही समान है, मेरा ही स्वरूप रहेंगे, मेरी ही आकृति उनमें होगी, वो संहार करता होंगे। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु पालन करता और रुद्र
संहार करता,
संहार करता। तीन हो गए, नहीं तीन नहीं है ये, कई है बाबा। एक व्यक्ति डॉक्टर भी है, वकील भी है और ज्योतिषी भी है। जब कचहरी जाता है तो काला कोट पहन के जा रहा है, उसके परिचित को वकील साहब कहके बुलाते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं? और जब वो डिस्पेंसरी में बैठता है सफेद कोट पहन करके तो डॉक्टर साहब कहा जाता है, और जब वो ज्योतिषी जी अपने गद्दी पर बैठ जाते हैं धोती कुर्ता पहन के तो पंडित जी कहलाते हैं। तो नाम तीन हो गए कि नहीं हो गए, पर व्यक्ति तो एक ही, ब्रह्मा विष्णु और महेश जैसे शेर हाथ और पैर, नाम तीन हो गए ना, शेर हाथ पैर, व्यक्ति एक ही है। इसी तरह ब्रह्मा विष्णु महेश नाम तीन है, मूल तत्व एक ही है। समझ में आ गया, कथा लंबी है, प्रसंग बहुत संक्षेप में कहते हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ की लेकिन चल नहीं पाई, जिनको पैदा करते वो बाबा जी बनते जाते, लंगोटी वाले। पिताजी कहते हैं बेटा संतान पैदा करो, मुझे आदेश प्राप्त हुआ है। कहते हैं पिताजी इस पचड़े में हम नहीं पढ़ेंगे, हम तो भजन करेंगे। नारद से कहा, नारद ने कहा मैं नरक जाना स्वीकार कर लूंगा, शादी नहीं करूंगा, इसकी चढ़ में नहीं पड़। बेटा संतान थोड़ी पैदा करके फिर भजन में क्या, जब गढ़वी को शराब के अंदर डुबाकर फिर धोना है तो डुबाव को है पहले, नहीं समझ में आया। कीचड़ में कपड़ा डाल दो और उसके बाद धो, तो धोने के झंझट गायब, लेटर कीचड़ में डालो नहीं, तो ये गृहस्थ जीवन तो कचड़ा है, कीचड़ है, ये तो मैं स्वीकार नहीं कर। अब ब्रह्मा जी दुखित हो गए, फिर ब्रह्मा जी के अंगूठे से दक्ष प्रजापति प्रकट हुए। दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं हैं, उनकी वंशावली यहां सब लिखे हैं। उन्होंने फिर अपने 13 कन्याएं कश्यप ऋषि को ब्याही हैं, उन 13 से ही सारा संसार भर गया, सब उन्हीं से। अब दक्ष प्रजापति जब प्रकट हुए तो रुद्र प्रकट हो गए उनकी भ्रगुटी से कैलाशवासी, तो उनके लिए भी अब चाहिए। तो दक्ष से कहा कि तुम पार्वती अम्बा को पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए तप करो, और तप करके उन्हें बेटी के रूप में प्राप्त करो और शिव को विवाह दो। सार बात सुना रहे ना आपको। दक्ष प्रजापति ने पहले दस हजार फिर एक हजार पुत्र पैदा किए, फिर नारद जी ने उनको बाबा जी बना दिया, तो फिर उन्होंने नारद को श्राप दिया कि तुम दो घड़ी से ज्यादा कहीं ठहर नहीं पाओगे। ये सब लंबे प्रसंग है। तो दक्ष प्रजापति ने पराम्बा भगवती को सती के रूप में, पुत्री के रूप में पाने के लिए 3000 वर्षों तक कठिन तप किया है। उनकी पत्नी का नाम है वीरणी, जिनसे सती भगवती प्रकट होने वाली हैं। कठिन तप, कभी केवल जल पी के रह गए, कभी केवल हवा पी के रह गए, कभी सूखे पत्ते का। भजन करना है तो थोड़ा स्वाद कम करना चाहिए ना। भोजन में कंट्रोल नहीं हुआ तो भजन नहीं हो पाए। निद्रा बहुत आती है, गरिष्ठ भोजन करते हो, सादा भोजन करो। निद्राम सत्व निषेवया, नींद ना आए हल्का फुल्का भोजन करो, थोड़ा करो, निद्रा अपने आप खुल जाएगी। अपनी बढ़ाई तो नहीं करनी चाहिए, गलत होता है ना, लेकिन हमें यह है कि सुबह 3, 3:30, 4 बजे आंख खोलना, और शरीर बिल्कुल हल्का फुल्का होता, कभी हाथों में दर्द नहीं, कभी सिर में नहीं, कभी पैरों में कुछ। हमारे साथ जो रहते हैं बहुत समय से रह रहे, ये लोग पैर तो दबा देते हैं, कमर से ऊपर कभी आज तक किसी का हाथ ही नहीं लगने, दर्द होते ही नहीं, नहीं समझ रहे। पैरों के भी आदत चेलों ने डाल दी है, जो आता वही पैर पकड़ लेता, जो आता वही पैर पकड़, तो करते करते वो आदत सी बन गई। किसको किसको मना करें भाई, आप ऊपर कभी देते, हल्का फुल्का शरीर। निद्राम सत्व निषेवया, जो व्यक्ति हल्का फुल्का भोजन करेगा वो निद्रा को जीत लेगा, धीरे धीरे उसकी निद्रा कम
हो जाएगी।
बोले ये नहीं हो सकता, बड़ा कठिन है, कठिन है तो सोते रहो। अरे तुम अभी उठे हो ऐसा लगता है, सो के उठ रहे हो, हाँ सो रहे थे, निद्रा आ गई, ज्यादा नहीं है। अच्छा बोलो, शंकर भगवान की
जय।
3000 वर्ष की कठिन तपश्चर्या के बाद पराम्बा भगवती सिंहवाहिनी शेर पर सवार होकर दक्ष प्रजापति के सामने प्रकट हो गई। बोलो साचे
दरबार की
जय।
दक्ष प्रजापति ने साष्टांग प्रणाम किया है, स्तुति की है लंबी चौड़ी, और यही कहा कि माँ आपका दर्शन मेरे तप का चमत्कार नहीं है, यह आपकी कृपा का ही चमत्कार है। आपने कृपा करके मुझे दर्शन दिया है, मैं आपके चरणों में बार बार नमन और प्रणाम करता हूं। आप शक्ति रूपा हो, भगवती शक्ति तो प्रत्यक्ष है ना भाई। अब जतिन कथा करा रहे हैं देवी भागवत में, भागवत हुआ, शिव पुराण हो गई, गीता हो गई, अब देवी भागवत चलेंगे। 14 तारीख से लेकर 22 तक 9 दिन, 23वें दिन पूर्णा होती भंडारा, इनके माता पिता का उत्सव। देखो शक्ति प्रत्यक्ष है और सूर्य भगवान भी प्रत्यक्ष है, 5 देवता है ना, प्रत्यक्ष 2 ही है। नहीं समझ में आया, भगवती शक्ति है ना, हर व्यक्ति के अंदर शक्ति है कि नहीं है? शक्ति नहीं तो तुम खड़े नहीं हो सकते, शक्ति नहीं है तो तुम पलक नहीं खोल सकते, उठा नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते। देवी भागवत में लिखा है, प्रसंग आ गया बता देते हैं। कोई ये नहीं कहता कि वृद्धावस्था में कि अब मुझ में शंकर नहीं रहे, कि विष्णु नहीं रहे, कि कृष्ण नहीं रहे, कोई नहीं, यही कहते हैं शक्ति नहीं रही। बोलो साचे
दरबार की।
بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ کیا کہتے ہیں؟ شکتی نہیں. تو شکتی کے روپ میں تو شکتی سب کے اندر بھی. اور اسی طرح سوریہ بھگوان یہ بھی نارائن پنچ دیووں میں ہے. یہ تمہیں بارہ گھنٹے دیکھتے ہیں, تم بارہ سیکنڈ بھی نہیں دیکھتے ان کو. یہ درباگ ہے کہ نہیں ہے؟ سامب بھگوان کرشن کے پتر ہیں, جامبوتی سے سامب ہوئے. بہت ہی زیادہ سندر تھے وہ, محل کی استریاں بھی دیکھ کے موہت ہو جاتی تھیں. کوڑ ہو گیا سامب کو, بھیانک گلت کٹ سر سری سفید. انیک اپائے کیے, علاج کیے, لیکن سفلتا نہیں. آتم ہتیا کرنے کے لیے تیار ہو گئے. کون؟ سامب.
سامب.
اور بھگوان کرشن بھی پرامبا بھگوتی کی آرادھنا کرتے ہیں, اس لیے جو بیٹا ہوا اس کا نام رکھا سامب. سامب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آمب کے سہت سامب شیو. نہیں سمجھ میں آ رہا؟ سامب ہے نا, سا الگ کر دو تو کیا رہ گیا؟
امب.
امب. مہرشی وسشٹھ بھی ماں کی آرادھنا کرتے تھے, تب وہ رام کے گرو بنے, گرو پد ملا انہیں ماں کی آرادھنا سے. اس میں کیا پرمان ہے؟ بولے ان کے 100 پتر ہوئے ہیں, بڑے پتر کا نام شکتی رکھا ہوا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں ہم ایسے ہی بولتے جا رہے ہیں. مہرشی وسشٹھ نے بڑے پتر کا نام کیا رکھا؟ شکتی. شانتی نے شکتی. ہاں. اور بھگوان کرشن نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ سامبا. امبا کے سہت شا سامان شیو. کیا یہ سب باتیں سمجھنے کی ہیں؟ اور یہ سبھی لوگ جلدی سنا نہیں پاتے, اور سننے والے بھی آج کل وہی ناچ گان اسی میں اپنا سمے پورا کر لیتے ہیں. جیسے بہت ادھین کرنا پڑتا ہے, بہت سنتوں کی لنگوٹیاں دھونی پڑتی, تب جا کر کے یہ بات سامنے آتی ہے. اچھا, تو شام جب آتم ہتیا کرنے کو تیار ہوئے تو بھگوان نے کہا کیا کرنے جا رہے ہو؟ تو آتم ہتیا کرنے والے کو کوکر شوکر بننا پڑتا ہے, پریت بننا پڑتا ہے. کیا کروں میں پتا جی, سہن نہیں ہوتا, اتنی کھجلی. اچھا سب غلط ہے. انیک اپائے کیے, سفلتا نہیں ملتی. انہوں نے کہا دیکھو, تب بھگوان کرشن نے کہا, اور دیوتا کا تو نام ہی سنتے ہو نا, اور جو دیوتا پرتیکش ہے اس کی آرادھنا کر لو, سب ٹھیک ہو. سروے روگا پرنشیتی, سروے روگا
پرنشیتی,
سمست روگ نشٹ ہو. پرتیکش بھگوان ہے سوریہ نارائن. پھر مندر بنایا گیا ہے, سوریہ بھگوان کی استھاپنا کی گئی ہے, سامب نے اپاسنا کی ہے, اور اپاسنا سماپت ہوتے ہوتے سارا کوڑ سماپت دیویہ روپ میں سام پر بیٹھے گئے. دیوتا چمتکاری ہیں مہاراج. اور آج کل وگیان کا یگ ہے, بھوتکواد کی اور دوڑتے جا رہے ہیں لوگ اندھے ہو کی طرح. یہ اندھی دوڑ ہے. ایک سنت بڑی اچھی بات سنا رہے تھے کہ پلینوں میں دشا سوچک یتر ہوتے ہیں, جانکاری ہے ہی پڑھے لکھے لوگ, کیونکہ اوپر کوئی روڈ تو ہے نہیں, کوئی چن ہے نہیں کہاں جا رہا ہے. وہ جو دشا سوچک یتر ہے وہ بتا دیتا ہے کس دشا میں چل رہے ہیں. وہ پہلے نشچت کر لیتے ہیں نا کہ اس شہر میں چلنا ہے, تو اس کا دشا چل کر لیتے. تو سنا رہے تھے بڑی اچھی بات, پلین چل رہا, کپتان نے گھوشنا کی دشا سوچک یتر سماپت ہو گیا ہے, لیکن گھبراؤ نہیں, ہمارا ویمان تیزی سے چل رہا ہے. اب جائے گا کہاں
یہ نہیں پتا,
گرے گا کہیں اندھے میں. دشا سوچک یتر ہی نہیں ہے اور پلین چل رہا ہے
تیزی سے,
رات کا سمے کہاں جائے گا, कहीं ना कहीं जाके टकराएगा। आज विज्ञान का यही है लक्षण है कि इसमें दिशा का लक्ष्य नहीं है, बस विकास विकास विकास, और ये विकास ही आगे चल के विनाश बन जाएगा। गुरुदेव सुनाया करते थे कि तुम ईश्वरी संविधान नहीं मानोगे तो तुम्हारा बनाया हुआ संविधान कौन मानेगा, और आज यही हो रहा है। वेद शास्त्र पुराण संविधान सब नष्ट कर दिए, नए नए विधान बनाए, आज समाज मानने को तैयार ही नहीं है। जब तुम ईश्वरी संविधान नहीं मानोगे तो फिर इंसान के बनाए कानूनों को कौन मानेगा। स्वामी जी कहा करते वेदादि शास्त्र जो है ये ईश्वरीय संविधान, वेदादि शास्त्रों का संरक्षण करते हुए और कुछ नवीन उसमें मिला दो चलेगा, पर प्राचीन बिल्कुल हटा दो, नवीन तो लक्ष्य तो है ही नहीं, दिशा सूचक यंत्र तो है ही नहीं, कहां जा रहे हैं। पंचतंत्र में कथा आती है, पहले लकड़ी लोग आरा से चीरते थे ना, समझ में आ रहा है, आधी चिरा है अब जाना है घर, तो फिर बंद ना हो जाए तो एक लकड़ी बीच में से फंसा देते थे, जानकारी है, ताकि कल आए तो सीधे फिर तो लकड़ी फंसा के वो चले गए। इतने में एक बंदर आ गया, बंदर वहीं बैठ गया, उसके अंडकोश जो है बंदर के ना दराज के बीच में आ गए, और वो लगा उसको बंदर का स्वभाव होता, और जैसे लकड़ी निकली शंकर भगवान की, इसी तरह की आज आंधी दौड़ है, परिणाम क्या होगा जाने ऊपर वाले, विकास होगा तो विनाश भी होगा, संशय नहीं। शास्त्रीय विधि से चलो, सूर्य की उपासना करो, गणपति का आराधन करो, भगवान शंकर के, भगवान विष्णु के, सब एक ही है ना, एक ही के पांच अंग है, और सबकी आराधना करोगे सब सहयोग करेंगे आपको आगे बढ़ाने के लिए, और अगर आपने नहीं किया तो कोई ना कोई विघ्न आपके सामने खड़ा हो जाएगा, आपकी साधना सफल नहीं हो पाएगी। हर हर महादेव शंभो
विश्वनाथ गंगे,
हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे,
विश्वनाथ गंगे काली अमरनाथ गंगे,
काशी विश्वनाथ गंगे काशी गंगे मैया पार्वती संगे,
हरे हर महादेव
शंभो काशी विश्वनाथ गंगे।
एक पर्ची और कल की थी वो रह गई और लोगों के भी नाम इसमें आए हुए थे। अष्ट दक्ष प्रजापति से परम्बा भगवती ने कहा तुमने कठिन तप किया है वर मांगो मां पुत्री बन जाओ। भोलेनाथ तप कर रहे हैं कैलाश पर उनके लिए आप उन्हीं की अर्धांगनी हो इसलिए आप बने। उन्होंने कहा मैं जग जननी हूं फिर भी तुम्हारे तप से मैं प्रसन्न हूं वचन दिया है पूरा करूंगी मैं तुम्हारी पुत्री बन जाती हूं लेकिन मेरी एक शर्त है जिस दिन मेरा अपमान होगा मैं शरीर छोड़ दूंगा। क्या हाँ आज तो बेटा जो कहे पत्नी जो कहे सो ही करेंगे लेकिन पहले अगर भजन में जो बाधा डालेगा हम उसको छोड़ देंगे भजन नहीं छोड़ेंगे। नहीं आई बात समझ जो भजन में हमारे बाधक बनेगा
वो छोड़ देंगे
उसको छोड़ दूंगा। कई कई बाधक बनी ना राम को वनवास देकर तो महाराज दशरथ कितना प्यार करते थे कई कई से इतिहास प्रसिद्ध है लेकिन अंत में जैसे राम अयोध्या से बाहर निकले कई कई के महल से भगवान महाराज दशरथ कौशल्या के महल में आ गए और रोते रोते बार बार कहा मेरी प्रार्थना आपसे कि मृत्यु के बाद भी मेरी डेड बॉडी पर कैकेयी की नजर नहीं पड़नी चाहिए। जीते जी तो नजर पड़ने ही नहीं है डेड बॉडी पर भी उसकी नजर न पड़े आप सबसे मैं प्रार्थना करता हूं इतनी कृपा करना मेरे ऊपर क्योंकि प्राण निकल जाने के बाद तो शरीर परतंत्र है। जो ईश्वर के भजन में बाधक बन रहा है त्याग शरीर से नहीं कर सकते तो मन से तो त्याग कर ही दो। अंजन कहा आंख जही फूटे बहुतक कहो कहां लो वो अंजन किस काम का जिससे आंखें ही फूट जाए और कुंडल किस काम का जो कान ही फाड़ दे वो व्यक्ति किस काम का जो हमारे भजन में बाधक बन जाए। सर्वोच्च भजन और महाराज जनक भगवान शंकर ने भी दो प्रतिज्ञा कराई थी देवताओं से मैं बिना पत्नी के रह सकता हूं पर भजन के बिना नहीं रहूंगा जिस दिन मेरे भजन में बाधा डालेगी मैं छोड़ दूंगा। मेरे पास उसी समय आए जब मैं बाह्य दृष्टि बाहर की दृष्टि वाला बनो जब मैं ध्यान में हूं डिस्टर्ब नहीं हूं। दूसरे मेरे वचनों पर जब विश्वास नहीं करेगी उसको त्याग दूंगा। तो आज की तो स्थिति बदल गई है महाराज पीड़ा होती है देख करके कैसे जोरू के गुलाम हो जाते हैं लोग कैसे बच्चों के आसक्त हो जाते हैं। भजन दो नंबर पर है परिवार एक नंबर पर है। जीवन में जब ऐसा समय आ जाए कि भजन एक नंबर पर हो और परिवार दो नंबर पर हो जाए तो तुम्हारा कल्याण हो जाए। क्या जन महाराज दशरथ ने साफ कह दिया जिय मीन बरुबारी बीना
जिय मीन बरु
मछली रह सकती है, मणि के बिना मणिधर सर्प रह सकता है, लेकिन मैं भगवान शंकर की सौगंध खाकर कहता हूं, दशरथ जी कह रहे हैं, मैं राम के बिना जीवित नहीं रहूंगा। पर केवल कहा नहीं, करके दिखा दिए। छह दिन का वियोग है रामायण में दशरथ जी का, नौमी को वरदान मिल लिया है कह कहीं नहीं, दसवीं को वनवास हुआ है, पूर्णिमा को सुमंत मंत्री वापस लौट के आए हैं। दशरथ जी ने भेजा था कि गंगा नहा के पहाड़ दिखा के ले आना, नहीं तो मैं जीवित नहीं। आए और जब सुनाया कि नहीं आ सके तो हार रघुनंदन प्राण पीरिते, हार रघुनंदन प्राण पीरिते, कि तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, हा जानकी हार व्याकुल। छह दिन का वियोग, छह बार राम कहकर सरी चौक, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुवर विरह, राव गयो सुर राम। इष्ट धनंद्रिनाम, ऐसा कौन सा मित्र है तुम्हारा जो कभी धोखा नहीं देगा, प्रश्न है ये। उत्तर है धर्म इष्ट धनंद्रिनाम, धर्म और ईश्वर ही तुम्हारा ऐसा मित्र है जो तुम्हें ना लोक में धोखा देगा ना परलोक में धोखा देगा, वो तुम्हारे साथ जाएगा, तुमको वैकुंठ पहुंचाने, उससे प्यार करो, उससे प्यार करो। जो जरा जरा सी बात में तुम्हें धोखा देने को तैयार खड़े हैं, ऐसे लोगों के साथ रह के क्या फल पाओगे, विचार करो थोड़ा। भगवान शंकर का यही कहना है कि मैं बिना भजन के नहीं रह सकता, पत्नी के बिना रह जाऊंगा। पहले तो तैयारी नहीं हुई, उन्होंने कहा भजन करने वालों के लिए स्त्री की क्या जरूरत है, स्त्री क्या जरूरत है, ये तो फंसाने वाली है, वैकुंठ थोड़ा भेजेगी, फंसा के रखेगी। विचार करना, मेरे वचनों पर विश्वास नहीं करेगी तो छोड़ दे। पार्वती अम्बा ने नंदा व्रत किया है, सती जी ने नवरात्रों में प्रकट हुई है बीरणी जी के यहां, दिव्य रूप का दर्शन कराया तो सामान्य बन गई है। महाराज जक्ष ने बहुत खुशियां मनाई, बहुत खुशियां, धीरे धीरे बड़ी हुई है। फिर भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए तप किया है, बिल्वकेश्वर हरिद्वार में, बिल्वकेश्वर है वहां कुंड अभी भी है, यहां तप किया, कठिन तप किया। तप करने से एक बार तो शरीर सूख जाता है पर फल मिलने के बाद फिर दिव्य बन करके निकलता। मई जून की गर्मी से घास सूख जाती है पर मई जून के बाद जब वर्षा शुरू होती है तो शरीर को नहीं देखना, साधना की ओर बढ़ते जाओ। शरीर तो मिटने वाला है, ये तो आज नहीं मिटेगा तो दो साल कितना जी लोगे, और कोई नई चीज क्या मिलनी है तुमको, वही रात वही दिन वही भोजन वही पत्नी वही पति वही साथ भाव, नया क्या है बोले, फिर भी फंसे पड़े हैं। پھر بھی اسی میں پھنسے پڑے. ارے آگے بڑھو. وید بھگوان کہتے ہیں چرائی بیٹی چرائی بیٹی, آگے بڑھو. چرن وئی مدھو بندتی, لکش تک پہنچو گے تم. ذرا سی تکلیف ہوئی بیٹھ گئے. کرونا ہوا ہم کو, ایک دن بھی ایسا نہیں تھا کہ جس دن اسنان نہ کیا ہو, سندھیا پوجن نہ کیا ہو. جو ہمارے سمپرک میں ہیں ان سے پوچھ لو. ٹھیک ہے, شریر ہے, ملا ہے ملا ہے, یہ تو کرائے کا مکان ہے, ایک دن تو چھوڑنا ہی ہے اس کو. پر اس کے لیے اس کو چھوڑ دینا یہ غلط ہے. وہ تو چلنا ہی چلنا ہے, نہیں تو پڑے رہ جاتے ہیں. چلتا شنکر بھگوان کی ستی تپ کر رہی ہیں. بھگوان شنکر کیلاش میں ہیں, سارے دیوتا مل کر کے کیلاش گئے, بھگوان شنکر کی لمبی چوڑی استوتی کی. کہو امر آئے کہ ہی تو دیوتاؤں سناؤ کیسے آنا ہوا. بھولے ناتھ بھگوان وشنو نے کہا میرے ساتھ تو یہ لکشمی ہیں, اور برہما جی کے ساتھ
پرشوتی,
پربھو آپ کے ساتھ بھی تو ہونا چاہیے نا. اور آپ کو پراپت کرنے کے لیے ستی بھگوتی آرادھنا کر رہے ہیں, ان پر کرپا تو کیا ہے. پہلے تو ہنس کے کہہ دیا جو بھجن میں لگ چکے ہیں انہیں اب شادی کا کیا مطلب. بھوگ ویورجت جو ہو چکے ہیں بھائی والے, نہیں نہیں ہم لوگ شادی دیکھنا چاہتے ہیں, وواہ دیکھنا چاہتے ہیں آپ کا, اور ہم دونوں پتنی والے ہیں اور آپ ہیں. بہت پرارتھنا کرنے کے بعد سویکرتی دے دی, اور سویکرتی دینے کے بعد پھر بھگوان شنکر ستی کے یہاں پہنچے ہیں, تب کر رہی تھی. ستی نے دیکھا بھولے ناتھ کو, چرنوں پرنام کیا. بھگوان شنکر نے کہا بر مانگو, سنکوچ میں دب گئی ہوں, کیسے کہوں میرے پتی بنو. ناری جاتی میں لجا اس کا بھوشن ہے, اگر لجا نہیں رہی تو اس ناری کا تو جیون کیا ہے. اور نئی نویلی بہو آئی ہے, سینڈو بنیان جیسی پہنے اور سوٹ پہنے ہوئے, اب پھل دینا ہے تو میرا ہاتھ پہ کچھ ہے ہی نہیں. چل سات نے اپنی چننی بڑھائی. اور یہ بات پہلے لکھی ہے, دیکھو مزے کی بات تو یہ ہے, مہا بھارت کا شلوک ہے پرسدھ, استریا پروش ویشیڑ کالی یوگ میں ایسا سمے آئے گا, استریا پروش ویشیڑ اور پنشہ استری ویش دھارینا. پروش جو ہے وہ استریوں والے کپڑے پہنے گے, ان کی طرح پہنے گے, اور استریوں کو داڑھی مونچھ بھگوان نے کیوں نہیں دی, پرشوں کو کیوں دے دیا تھا. ابھی صفا چٹ ہو گئے اور وہ بھی ایک ویسے کپڑے, اور یہ بھی ویسے, پتا کیسے لگے کون استری کون پرش ہے. کیا ایک چھوکرا جا رہا تھا لڑکیوں کی طرح کپڑے پہن کے, کسی من چلے لڑکے نے چھیڑ دیا, مار پیٹ ہوئی, بعد میں پتا لگا کہ چھوڑا ہے. ارے 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 مار پیٹ ہی ہو گئی اور کچھ نہیں. یہ آج کا زمانہ ہو گیا ہے, ناری میں لجا ہونی چاہیے. اب دیکھو بھگوان شنکر کہہ رہے ہیں بھر مانگو, سچا نہیں کچھ مکھ سے نہیں نکل رہا تھا. بھگوان شنکر نے کہا میں سمجھ گیا ہوں, بولو, میں تمہارا پتی بن جاؤں گا, تم چنتا نہیں. دیکھا پرسن بھولے ناتھ तो सती अम्बा ने कहा कि पिताजी से कहकर शास्त्रीय विधि से शादी करा के मुझे स्वीकार कर ले। शास्त्रीय विधि जैसे यंत्रों के द्वारा अंदर के बीमारियों का पता लग जाता है, इसी तरह शास्त्रों के आधार पर ईश्वर का भी पता लग जाया करता है। सबके नेत्र हैं, जिनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है उनके नेत्र बंद हैं। सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यश नास्त्यंध एव। क्या जिनके जीवन में शास्त्र नहीं, अभी खन्ना जी का बेटा है, ऐसी गुप्त बातें पूछी उसने इस अवस्था में, ये गहरी बात है। मैंने सुना है कैसे कमी, सुना है कैसे ये नहीं करना है, ये करना है, ये करना है, पूछता रहा बेटा। आज बच्चों का दोष नहीं है, क्या समझा, दोष तो माता पिता का है, क्योंकि माता पिता के लिए रामायण में ये भी लिखा हुआ है कलयुग के माँ बाप कैसे होंगे, भले बच्चों को बुलाकर पेट भरने की विद्या सिखाते हैं। मात पिता बालकन बुलावाई और उदर भरे सो धर्म सिखावे। बचपन से ही तुमने 3 साल की उम्र से ही उसको अंग्रेजी स्कूल में भेज दिया, अब अंग्रेजी स्कूल में रह करके वही भाषा पढ़ते पढ़ते वही संस्कार वाले हो गए, और जैसे पढ़ करके फुर्सत हुए शादी हो गई, और शादी भी वैसे ही हुई, बहू लड़की वैसे ही है, और दोनों अलग हो गए। तो प्राचीन संस्कार माता पिता दादा दादी से जो मिलने थे तो चले गए ना। अभी हमने सुनाया था ना एक दिन कि वो एक व्यक्ति ने कर्जा काट के बेटे को पढ़ाया लिखाया, वो ऑफिसर बन गया कि दूसरे शहर में नौकरी कर रहा, पिता को यहां 10,000 रुपए की जरूरत है, कर्जे ही चुकाना था, वो क्या करना। फोन किया, क्या हाल है बेटे, पापा बहुत बढ़िया है, बाल बच्चे बहुत ठीक रह रहे हैं, आराम से चल रहे हैं। बेटा वो 10,000 रुपया चुकाना था, हैं? सारी बातें तो सुन ली ना, जब कहा 10,000 चुकाना है, हैं? पापा सुना नहीं मैंने क्या कह रहा, जोर से बोलो, फिर भी नहीं सुन रहे। ऑपरेटर होते थे पहले, आजकल तो मोबाइल चल गया ना, पहले ऑपरेटर होते थे। उसने कहा रे भैया तेरा बाप पैसे मांग रहा है, कर्जे में दबा हुआ है, मैं सुन रहा हूं तुम्हें सुनाई नहीं पड़ रहा, और वो आचारी बातें सुनाई पड़ गई तुमको। अच्छा आपको सुनाई पड़ गया ऑपरेटर ने, हाँ मैंने तो सुना है। बोले फिर आप ही रुपया दे दो। आज ये स्थिति है समाज, माता पिता क्या स्थिति में रह रहे हैं, किनकी क्या स्थिति है, और उसका कारण माता पिता भी तो है ना। मेरा बेटा IAS 70 बन जाए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, खूब पैसे कमाए, मात पिता बालकन बुलावें और उदर भरे सोई धर्म सिखावे। आज ये स्थिति बन गई। लेकिन धर्मेण हीना पशु भी समानः, जो व्यक्ति धर्महीन है वो पशु के समान। हमारे शिष्यों में ऐसे लड़के हैं, वो आ जाए सामने हम पहचान नहीं पाएंगे, कभी आते नहीं सामने, क्या समझा। स्थिति ऐसी भयानक हो गई है आज, और धर्म का पालन बहुत जरूरी है। महाराज दक्ष को आके पता लगा है बेटी आ गई है, विवाह की तैयारी हुई है, भगवान शंकर भी वहां तैयारी कर रहे हैं, देवताओं का निमंत्रण हुआ है, सब देवता बारात में शामिल हुए हैं, आए हैं। पार्वती अम्बा के यहां तो दूसरे ढंग से गए थे ना, पर यहां नहीं है, यहां तो जो आभूषण बसन थे वो सब के सब दिव्य हो गए। गले में जो सर्प लपटा हुआ है, जो मुंडमाल है, सब आभूषण बन गए। दिव्य स्वरूप, इतना दिव्य स्वरूप भगवान भोलेनाथ का कि महाराज दूसरे देवताओं की सुंदरता फीकी पड़ गई। भोलेनाथ बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। वो जो ऊपर से ऐसे बने रहते इसलिए कि लोग मेरे पास ना आए, ये समझ लेना। अरे भाई, जिसके गले में सांप लपटा हो उसके गले लगने कोई जाएगा क्या? तो बंसी वाला बजा रहा है, सुनते ही नाचना शुरू कर देते हैं, क्या समझे? और भोले बाबा को सुनते ही लोग हो जाते। लेकिन दिव्य दिव्याति दिव्य स्वरूप है भोलेनाथ। पार्वती अम्बा कितनी सुंदरी है, सती तो लिखा परम शिव मात्र दृंग, परम शिव दृंग मात्र विषया तथा ते सौंदर्यम परम शिव दृंग मात्र। हे मां, तुम इतनी सुंदरी हो कि तुम्हारे सौंदर्य को केवल शंकर के नेत्र ही देख सकते हैं। और भगवान शंकर की स्तुति में कहा गया है, हे मां पराम्बा भगवती, उनके दिव्य सौंदर्य को केवल आप ही देख सकते, और कौन देख। दिव्य सौंदर्य माधुर्य, क्या समझ। कचरा घर में पड़े हुए ऋषि को बहुत दंड दंड मान रहा है, उसका चिंतन बंधन करो, कल्याण हो जाएगा। तो अब लंबी बात ना हो, बस यही कि कनखल में दक्ष प्रजापति की राजधानी जो है वो
कनखल,
कनखल अम्बा पार्वती का पराकट भी सती का कनखल में ही हुआ है, तपस्या भी वहीं हुई है और शरीर भी वहीं छोड़ा हुआ है। ये जो आपको अभी दिख रहे हैं ना आश्रम, 50-100 साल पहले एक भी नहीं था ये तो जब बांध बंध गया तब धारा वहां चली गई काली ने, तो यहां गंगा बैठी थी पहले। हां, ज्वालापुर और कनखल ये पुराना बसा हुआ है, इसलिए भी लिखा हुआ है गंगा कनखले पुण्या कुरुक्षेत्र सरस्वती। कुरुक्षेत्र में सरस्वती सबसे पूर्णमयी है और कनखल में गंगा सबसे पूर्णमयी। हर की पौड़ी गोता लगाने के बाद
कनखल में गोता,
कनखल में भी कभी गोता लगा लिया करो। अच्छा, यहां विवाह संपन्न हुआ है चैत्र मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रविवार का दिन। भगवान शंकर भगवती सती का विवाह यहां संपन्न हुआ है। अब पुरानी परंपरा है, जो हमें कुछ दे हमें उसे कुछ देना चाहिए। ब्रह्मा जी ने विवाह पढ़ा है, अब विवाह पढ़ा तो फिर दक्षिणा चाहिए। ब्रह्मा जी को क्या मांगना था? पर भगवान भोलेनाथ स्वयं बोले, आपने शास्त्रीय विधि से विवाह पढ़ा है इसलिए ले लिया। भगवान कृष्ण ने भी तो यही कहा था ना सांदीपनी गुरु से, आपने हमें पढ़ाया ज्ञान दिया इसलिए बदले में कुछ तो देना चाहिए ना भाई, ये आपका कर्तव्य है ऐसा। ब्रह्मा जी ने कहा, फिर मेरी प्रार्थना यह है कि आप इसी वेदी में अपने अंश रूप से सदा निवास करें और इस तिथि में जो यहां आके स्नान करें उनकी सारी कामनाएं पूर्ण होती रहें, जिनके विवाह न होते हो वो यहां गोता लगाएं, उनके विवाह हो जाएं। तो अब सब वर्णन किया गया, भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया है, फिर खूब बाजे बजे हो गए। चलो भाई सुनाओ तो कैलाश के वासी।
कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार को,
आयो शरण निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार हो,
आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो,
कैलाश के निवासी नमो बार बार हो,
नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो,
आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो।
जय हो शिव, तूने निराश ना किया
भक्तों को, शिव तूने निराश ना किया
भक्तों को, शिव तूने निराश ना किया
भक्तों को, शिव तूने निराश ना किया।
मांगा जिसे जो चाह वरदान दे दिया,
मांगा जिसे जो चाह वरदान दे दिया,
मांगा जिसे जो चाह वरदान दे दिया, तेरा दायरा बड़ा दातार तू,
बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू,
बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू,
बड़ा है तेरा दायरा बड़ा।
हाँ भैया, आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो,
आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो,
आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो, क्या करूं मैं राखों के ढेर का,
बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का,
बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का,
बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का।
लिपटी भभूत में है खजाना कुबेर का,
लिपटी भभूत में है खजाना कुबेर का,
ओ लिपटी भभूत में है खजाना कुबेर का,
लिपटी
बबूत में सजना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओंकार तू,
हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओंकार तू,
आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू,
आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू,
ओ आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू,
आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू।
प्रमाण दे
क्या नहीं दिया हम क्या प्रमाण दे,
क्या क्या नहीं दिया हम क्या प्रमाण दे,
क्या क्या नहीं दिया हम क्या प्रमाण दे।
बस गए त्रिलोक शंभु तेरे ही दाम,
से
बस गए त्रिलोक शंभु तेरे ही दान से
बस गए त्रिलोक शंभु तेरे ही दान से
बस गए त्रिलोक शंभु तेरे ही दान से
हे जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू
है जहर पिया जीवन दिया
कितना उदार तू आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू
आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू
ओ आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू
आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू
कैलाश के निवासी नमो बार बार हो
कैलाश के निवासी नमो बार बार हो
शरण तिहारी भोले तार तार दो
आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो
तेरी दया से यहाँ सभी
लेते हैं श्वास तेरी दया से यहाँ सभी
कहे दास एक बार मुझको निहार तू
कहे दास एक बार मुझको निहार तू
आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू
आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू
आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू इसीलिए गाइए कैलाश के निवासी नमो बार बार हो
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 आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो
आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो
आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो
थोड़ी और जोर से हर हर
कैलाश पहुंचे भगवान शंकर देवताओं को विदा किया है ससम्मान सती के साथ भगवान का विहार है। एक दिन भगवती सती ने भगवान शंकर से प्रश्न किया है, भोलेनाथ माया के चक्कर में पड़ के रात दिन दुखी रहने वाले जीवों का उद्धार कैसे होगा, सरल से सरल उपाय क्या है। हमने कहा ना कि बड़े लोग जो होते हैं ना वो सबका भला सोचते हैं, जो सामान्य बुद्धि के लोग होते हैं वो अपने परिवार का भला, उनकी जिंदगी का भाव है प्योर परिवार। ऐसे पापियों का उद्धार कैसे होगा, भगवान शंकर ने कहा सती नवधा भक्ति चतुर योगोश देवेशी क्या कलौतुषु विशेषतः, चारों युगों में भक्ति सबसे श्रेष्ठ, कलयुग में विशेष है, जो व्यक्ति भक्ति के पक्ष में आ गया, जिसके हृदय में कीर्तन में आनंद आने लगा है, कथा श्रवण में आनंद आने लगा, संतों की सेवा करने में मन में प्रसन्नता हो। भगवान राम रामायण में कहते हैं लक्ष्मण, देखो सांवले सांवले बादल आ गए, मंद मंद गज रहे हैं, अरे मोर कैसे नाच रहे हैं। प्रभु उदाहरण दे रहे हैं, ग्रही बीरतरत हरस जग विष्णु भगत का दे, कि बादलों को देख के मोर ऐसे नाच रहे हैं जैसे भक्त के घर गुरु या संत पहुंच जाए तो मारे खुशी के नाचने लगते हैं। ले भगवान के ग्रही बीरतर तो हरस जग विष्णु भगत कहां देख, जब भक्त घर आते हैं, भक्ति भक्तों का संग जो है बांझन बेटा पाए, बंध्या स्त्री को पुत्र हो उसे जो खुशी होगी उससे ज्यादा खुशी उन व्यक्तियों को होती है जिनके यहां भगवान संत या गुरु पहुंच जाया करते हैं। अंधे को नेत्र मिल जाए जो खुशी होगी उससे भी ज्यादा भक्तों को खुशी होती है संतों का दर्शन कर। कंगाल कुबेर बन जाए जो खुशी होगी उससे भी ज्यादा भक्तों। कबीर दास जी के लिए विमान आया, राम संदेशा भेजया दिया कबीरा रोए, जो सुख है सत्संग में सो बैकुंठ ना। विमान को वापिस भेज दो, सत्संग में जो आनंद मिला, भवत जन कथा श्रवणे न वाश्यात, भागवत में लिखा प्रभु आपकी और आपके भक्तों की कथा सुनने में, भक्तों के बीच बैठने में जो आनंद मिलता है वो तो निराकार ब्रह्म में भी नहीं मिलेगा, फिर स्वर्ग में कहां मिल सकता। भाग्यवान व्यक्ति हैं जुड़ जाते। ज्ञानी पार्वती सती, ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, लाखों करोड़ों में कोई एक ज्ञानी मिलते, बातों वाले बहुत ज्ञानी मिल जाएंगे लेकिन व्यवहार में आने वाले बहुत कम होते हैं। मेरे भक्तों का लक्षण क्या है, भले मंगला मंगलम यद यद करोति ईश्वरे ही में सर्वम तन मंगला इति विश्वासा सख्य लक्षण। मुझसे प्यार कर लेने वालों का जीवन, उनके जीवन में परिवार में मंगल आए तो और अमंगल आए तो वो दोनों को भगवान का प्रसाद मान के स्वीकार कर लेते हैं। मेरे लिए सब मंगल है, घर में सुख आया तो मंगल है और दुख आए तो मंगल है, पत्नी सुशीला मिल जाए सेवा करने वाली तो मंगल है और कड़ुआ बोलने वाली मिल जाए तब भी मंगल है। क्यों, अरे बोले जो कड़ुआ बोलती रहेगी उससे प्यार हो ना पाएगा, भगवान से प्यार होगा बेड़ा पार हो जाएगा हमारा, क्या समझे। बेटा लायक है तो अच्छा है और नालायक हो तो और ज्यादा अच्छा है। कैसे, बेटा लायक है रात दिन सेवा करेगा तो ममता बढ़ेगी, बेटा लायक है तो घर संभाल लेगा तो हम भजन कर लेंगे, और नालायक है तो और ज्यादा अच्छा है, घर से मन हट जाएगा भगवान के चरणों में वृत्ति जोड़ेगी भजन करेंगे उद्धार हो जाएगा। शास्त्रों में हर प्रश्न का उत्तर समाया हुआ है, इसलिए अस विचारी जोई कर सतसंगा, अस विचारी जोई कर सतसंगा, राम भगति ते सुलभ बिहंगा, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछु आन, बिनु हरि कृपा न होए सो गावे वेद पुराण। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, اسے بڑا کوئی لاس نہیں ہے جیون میں. اس سے پہلے ہم سنا چکے کہ ایک ویکتی کو بچے کو آپ نے چاکلیٹ دیا ہے اور وہ چوس رہا ہے, اور پھر دو ہزاریہ سو نوٹ اس کو دکھا دو, وہ دے دے یہ لے لے, مانے گا دے دے گا؟ کیوں آپ کی بدھی کمزور ہے؟ تو جوان اور بوڑھوں کی بدھی بھی بال بدھی کہلاتی ہے. جو پریوار تک ہی سیمت رہنے والے ہیں وہ جوان ہیں یا بوڑھے ہیں, بولے بال بدھی. ان کی بدھی جو ہے وہ بچوں جیسی بدھی ہے, بال بدھی کہلاتی ہے. کاچارتھ بسمرتم رتنم, ارے کانچ کے بدلے میں ڈائمنڈ کھو دیا, ڈائمنڈ دے کر کے کانچ لے لیا, بھگوان کے بھجن سے بڑھ کے تو نے پریوار کو مان لیا, ان کے بھرن پوشن میں زندگی برباد کر رہا ہے. تیری بدھی پشوؤں جیسی ہے. پرشا پشو یہ شبد بھی ہے, وہ آکرتی سے تو پرش ہے لیکن بدھی سے پشو ہے. جو رات دن پریوار کے بھرن پوشن میں ہی لگا رہتا ہے. اس کے بعد بھگوان شنکر کتھا سننے چلے. ایک بار تریتا یوگ مائی,
ایک بار تریتا یوگ مائی,
شام ہو گئے گوم بدری چھپائی,
شام ہو گئے گوم بدری چھپائی,
سنگ ستی جگ جننی بھوانی,
سنگ ستی جگ جننی بھوانی,
رشی پوجے کتھائیں شنکر کے مکھ سے ہی نکلی ہوئی ہیں. پاروتی کے پرشن اور ان کے ہوتے ہر گرنتھ ہر پرشن, اور وہ بھی آج کتھا سننے آئے ہوئے ہیں, اور کیلاش سے چل کے ساؤتھ میں آئے ہیں, اگست رشی جہاں رہ رہے تھے. اس کا ادھیاتم یہ ہے کہ اہنکار کیلاش جیسا اونچا ہے میں, اور ساؤتھ جو ہے اور دینتا روپی تھل. جن کے من میں ابھیمان ہے وہ نیچے آ کے نہیں بیٹھ سکتے, سمجھ میں آ رہا ہے؟ جن کا ابھیمان گلت ہو گیا ہے وہی آ کے بیٹھتے ہیں. اور یہ بات پہلے سن چکے ہو کہ بھرا آئے گا تو خالی جائے گا, اور خالی آئے گا تو
بھرا جائے گا.
بھرا جائے دینتا نمرتا, چوبیس گھنٹے ہمالیہ میں برشا ہوتی رہے, گھنٹے بعد دیکھو گے پانی ہے وہاں, اونچا ہے نا, اور نیچے گڈھے بنے ہوئے ہیں, مہینہ جل بھرا رہے گا اس میں نے, اوپر گرا نیچے بھرا. جو ابھیمان لے کر کے بیٹھیں گے ان کے اندر گیان نہیں جائے گا, جو دینتا لے کر کے بیٹھیں گے ज्ञान उनके अंदर भर जाएगा, भक्ति भर जाएगी. भक्ति पहले है, ज्ञान और वैराग्य बाद में. भक्ति है माता, ज्ञान वैराग्य है पुत्र, शांति है बिटिया. ज्ञान वैराग्य है पुत्र और शांति है
बिटिया
बेटी, और भक्ति है माता. अगर माता भक्ति तुम्हारे अंदर आ गई विवाह के बाद कोई स्त्री बंधा रहना नहीं चाहती, मजबूरी है कि उसका गर्भा से खराब है, नहीं तो हर शादी होने के बाद ही मां बनने के स्वप्न देखने लगे. तो भक्ति माता है और भगवान विष्णु पुरुष हैं, समझ लो तरह इसके हिसाब से. भगवान राम कृष्ण विष्णु शंकर ये पुरुष हैं और भक्ति माता है. जब दोनों का संबंध जुड़ेगा तो ज्ञान वैराग्य पुत्र और शांति रूपी बिटिया पैदा हो जाएगी, जीवन तुम्हारा सफल हो जाएगा.
सद्गुरुदेव भगवान की,
इसलिए भक्ति को बसा लो, यही ऊपर ले जाएगी. आपने कथा सुनाई है, दक्षिणा ले लीजिए। भगवान शंकर ने कहा अगस्त्य जी से, उन्होंने कहा प्रेमा भक्ति का दान दे दो, यही दक्षिणा है। प्रेमा भक्ति दे दो। वापिस चले हैं, रास्ते में भगवान राम रो रहे हैं, हे खाग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी,
तुम देखी सीता मृग नैनी,
फागुन खान जान की सीता,
फागुन खान जान की सीता,
रूप शील व्रत नैन पुनीता,
रूप शील व्रत नैन पुनीता,
हे खाग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। राम बिल्कुल पागल जैसे हो गए सीता के वियोग में। पक्षियों से पूछ रहे हैं, तुम ऊपर उड़ रहे हो, कहीं सीता दिख रही तो मुझे बता दो। बड़े वृक्षों से लपट जाते हैं, तुमने देखा हो तो। उसी से भगवान शंकर ने देखा तो भगवान शंकर ने दूर से प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद जग पावन, और आस कही चले वो मनोज नशा। सच्चिदानंद भगवान की सती सुदशा संभुत देखी,
सती सुदशा संभुत देखी,
पुर उपजा संदेह विशेष,
पुर उपजा संदेह देखी।
मां सती के मन में संदेह हो गया, ये पागल की तरह तो पत्नी का पता पूछ रहे हैं और भोलेनाथ सच्चिदानंद कह के प्रणाम कर रहे हैं। भोलेनाथ के मुख से कभी गलत शब्द तो निकल ही नहीं सकता, और ये राजकुमार परमात्मा हो नहीं सकते। जो वृक्षों से लपट के सीता का पता पूछ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं, वो भगवान कैसे हो सकते हैं? यद्यपि प्रकट नहीं कहा, यद्यपि प्रकट न कहो भवानी, हर अंतर्यामी सब
ज्ञानी।
सती तेरा नारी स्वभाव है, नारियों को संदेह जल्दी हो जाता है, क्या जरा में डाउट होगा, कृष्णा को दाल में काला है। बोलो शंकर भगवान की। सुनहु सती तब नारी स्वभाव, संशय अस न धरी और काओ, जासु कथा कुंभा जरिष गायी, भगत जासु में तुम नहीं सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, ये मेरे इष्ट देव, सेवत जाई सदा मन
धीरा।
यद्यपि कहो शुभ बहु भांति, अनेक प्रकार समझाए, लेकिन सती के मन में बात कह दिया, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो,
तुम्हारे मन अति संदेह हो,
भाव की न जाय परीक्षा ले हो, तब लग बैठ रहो बट शाही, जब लग तुम आई हो मोही पाई,
जब लग तुम आई हो मोही पाई।
सती परीक्षा लेने चली, भगवान शंकर ने सोचा मेरे वचनों पर भी विश्वास नहीं है तो परिणाम भयानक होगा। दूसरे मिनट सोचने लगे, जो बिधि ने लिख दिया वही होना है, अपना समय क्यों खराब कर। हुई है सोई जो राम रच राखा, गृहस्थों के लिए सूत्र है। गृहस्थ बैठे बैठे परिवार के बारे सोचते रहते, स्वभाव ही बन गया सोचने। और भगवान शंकर कहते हैं, हुई है सोई जो राम रच राखा, को कर तरक बढ़ावे सागर, जो विधाता ने लिख दिया है वो ही होने वाला है, अन्यथा कुछ होगा नहीं, तो हम अपना समय क्यों खराब करें फिर परिवार के बारे में। अस कहे लगे जपन हरि
नाम,
संकेत है कि भजन ज्यादा करो, जो प्रारब्ध में लिखा है अपने आप चल जाए। सीता का रूप धारण करके पहुंची, भगवान राम ने देखा, रो रहे थे पागल की तरह, और देखते ही मुस्कुराने लगे। मैं दशरथ नंदन राम आपके चरणों में करता हूं प्रणाम, मातेश्वरी भगवान शंकर को छोड़कर अकेली कैसे घूम रही हो। जोर पानी प्रभु कीन प्रणाम, स्त्री को अकेले नहीं जाना चाहिए कहीं। ये जवानी अवस्था इतनी खतरनाक है, नहीं समझ। स्त्री का मन ठीक है, शुद्ध है, लेकिन देखने वाले के मन में क्या है क्या पता लगेगा तुमको, इसलिए ध्यान रखना चाहिए। और तुम रोटी हाथ में लिए जा रहे हो, कुत्ता पीछे लगा, तुमको बड़ा बदमाश है पीछे लगा है, तुम रोटी लिए हो तो पीछे लगा है, तुम अकेली घूमोगी, कपड़े ऐसे पहनोगी। हमारे शास्त्रों में कुत्ता, जवान पुरुष और इंद्र तीनों एक श्रेणी के होते हैं। सरिस सुवान जवान मघवन, श्वान जवान मघवन इंद्र, अतद्धिते स्वायु नाम अतद्धिते लिखा व्याकरण में, स्वयु मघो नाम अतद्धिते। जो ईश्वर से नहीं जुड़ पाए हैं ऐसे जवान पुरुष कुत्ता और इंद्र एक समान है, जहां कहीं देखेंगे दौड़ पड़ेंगे, पीछे लग जाएंगे। इसलिए पूछते हैं भगवान राम, विपिन अकेली फिरो के हेतु, जहां पुरुष ही पुरुष बैठे हो तुम अकेली जाके बैठोगी, मर्यादा के विरुद्ध है ये। वहां देखो स्त्रियां हैं बहुत कि नहीं है तो बैठना ठीक है, और वहां पुरुष कोई है, स्त्रियां कोई है ही नहीं, और तुम जा रही हो, कहां तक उचित है। शंकर भगवान की
जय।
सती ने कहा कि भोलेनाथ ने आपको प्रणाम क्यों किया, वो तो सबके दादा गुरु हैं, क्या समझा। तो फिर वहां भगवान राम ने बताया है, रामायण में नहीं दिया, शिव पुराण में लिखा हुआ, भगवान शंकर ने गोलोक धाम में सिंहासन बनाई और विष्णु रूप में मुझे लाके बैठा ला और कहा कि संसार की रक्षा, धर्म की मर्यादा के लिए आपको अवतार लेना होगा, मैं तो कैलाश में बैठ के आत्मचिंतन, शिव का चिंतन करूंगा। आज देखा कि जो कहा था पूरा कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने मुझे प्रणाम किया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, इसलिए उन्होंने मुझे, शंकर तो सबसे बड़े हैं ना, ये ध्यान रखना चाहिए। अस्तु, फिर भगवान ने अपना प्रभाव दिखाया, एक मिनट में विराम लेते हैं, प्रभाव दिखाया, घबरा गई चारों तरफ, राम सीता राम लक्ष्मण सीता राम, नीचे ऊपर सब, फिर समेट लिए। भगवान शंकर के यहां पहुंची, कैसे ली परीक्षा सुनाओ तो जरा, सफेद झूठ बोल गई, सफेद झूठ बोली, क्या बोले, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, गई काहे को दे, बोले मत्था टेकना भूल गई थी ना उस समय, आपने प्रणाम किया मैं भूल गई से। तब शंकर देखो धरि ध्याना, सारा चरित्र भगवान शंकर ने।